الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں ہم آج 196 نمبر 196 آیت کو پڑھیں گے۔ میں یہ بات کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ قبلے کی تحویل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت صرف الہ واحد کا حق ہے کہ وہ دے، اس کے بعد سے پھر کچھ شریعت کے احکام دیے گئے، ان احکام کے اندر کچھ باتیں دوسری باتوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی چلی گئیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حرام مہینوں کے اندر اگر جنگ کر ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، کیا مسلمان دشمنوں کا منہ دیکھتے رہیں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ وہاں سے بات ظاہر ہے کہ حج کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے بات چلی تو پھر حج تک پہنچ گئی، اور اب کچھ حج کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اصلاحات کرنی تھی، جو قریش مکہ نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں، ان کے پہلو سے کچھ چیزیں بتانی تھی اور کچھ نئی چیزیں وجود میں آ سکتی تھیں، ان کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کیا کرو۔ اتمو پورا کرنے کا وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دینا ہے اس میں پورا نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بعض صورتوں میں، تو اس وجہ سے یہاں حج کے مکمل کرنے کا بیان آ گیا ہے کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اللہ کے لیے پورا کیا کرو، اس میں دو تین پہلو پیش نظر ہیں۔ توحید، کہ بتوں اور دیوتاؤں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ دوسرا پہلو اس میں نیت کا ہے، کہ تمہاری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو للہ کے لیے ہے وہ اللہ کی خاطر ہے۔ تینوں باتیں للہ کے اندر موجود، ایک یہ کہ ہم اللہ کے لیے کریں، بتوں کے لیے نہ کریں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے حج نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جو حج اور عمرہ ہے اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور للہ کا مطلب تیسرا یہ بنتا ہے کہ اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ مشکل ہو، آسان ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کے مطابق ہی حج اور عمرہ کو مکمل کیا جائے گا، یعنی شریعت کے تحت جو بھی قواعد طے کر دیے گئے ہیں ان کے مطابق حج اور عمرہ کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چونکہ مسئلہ یہ زیر بحث آنے والا تھا کہ اگر حج کرنے کے لیے آدمی نکلے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں روک لیا جائے، دشمن آ جائے، جنگ ہو جائے، یا جیسے ہمارے پچھلے 2019-20 میں کووڈ کا مسئلہ ہو گیا تھا، کئی لوگوں نے ارادہ کر لیا ہوا تھا لیکن وہ گھر گئے تھے، جا نہیں سکے تھے، اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا۔ عام حالات میں تو یہی ہوگا کہ حج پورا کیا جائے گا، عمرہ بھی پورا کیا جائے گا۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کہیں گھر جاؤ، گر جاؤ یعنی دشمن تمہیں گھیر لے، تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو وہ کر دی جائے، یہ حج اور عمرے کا بدل ہو جائے گا۔ یعنی پھر جو قربانی تم کر سکتے ہو، ساتھ لے کر گئے تھے تب، ساتھ لے کر نہیں گئے وہاں سے خرید کر کر دی جائے جہاں پھنس گئے ہیں، یا جب بھی جس طرح سے بھی ادھر ادھر جا کر کوئی موقع ملے تو ہم قربانی کر دیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ حج اور عمرہ پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت ہو جائے گی۔ تو اگر تم گھر جاؤ تو پھر جو بھی قربانی میسر آ جائے، یہ ظاہر ہے کہ رخصت کا قاعدہ ہے۔ رخصت کے قاعدے میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض عبادات میں کہ آدمی یہ فیصلہ کرے کہ وہ تو حج کرنے گیا تھا لیکن حملہ ہو گیا راستے میں، ڈاکو پڑ گئے، یا کسی دوسری قوم نے حملہ کر دیا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، جا ہی نہیں سکے، تو آدمی کے اندر خلش ہوتی ہے کہ اس کو کیسے میں کروں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حل کر دیا ہے۔ غالباً اس کے سب سے اچھا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، کہ جیسے ہی وہ उन्होंने रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, तो वहीं पर कुर्बानियाँ कर दी गईं हुदैबिया के मकाम पर ही। तो फरमाया फ़ैन सिर तुम फमस्तई सर मिनल हदी, कि अगर हज करने के लिए जा रहे हो, उमरा करने के लिए जा रहे हो और रास्ते में घेर लिए गए हो, तो बस अपनी कुर्बानी जो मैसर हो वह कर दो। वला तहलिकु रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियो महिला, और अपने सरों को तुम नहीं मूंढोगे यहाँ तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुँच जाए। सरों को कुर्बानी के बाद जब हम हज करते हैं या उमरा करते हैं, तो कुर्बानी अगर करनी हो तो उसके बाद फिर सर के बाल मूंढे जाते हैं। ये हमारे मुहक्किकीन की राय के मुताबिक खुदा की गुलामी में दाखिल होना है। पुराने ज़माने में कहते हैं कि जब किसी को ग़ुलाम बनाया जाता था तो उसका सर मूंढ दिया जाता था, या कोई और निशानात लगा लेते होंगे, लेकिन अरबों के इलाके में सर मूंढ दिया जाता था, तो ये इस बात की अलामत होती थी कि वो ग़ुलाम बन गए। तो हाजी के लिए भी हज करने की एक अलामत के तौर पर कि तुम हाजी हो गए हो, हमारे उलमा ने उसको ये वाज़े किया है कि गालबन उस रस्म के साथ इसका ताल्लुक है। हल्क जो है ये सर को मूंढ देना होता है किसी रेज़र के साथ या किसी इस तरह की चीज़ के साथ के बिल्कुल बाल कट जाते हैं। अलबत्ता हल्के कैंची के साथ भी काटे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूँकि कुरान के अल्फाज हल्क के आए हैं तो पसंदीदा यही समझा जाता है कि बिल्कुल बाल मुंडवा दिए जाएं, जैसे शेव करना होता है उस तरह की। हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला हु, इसके अंदर मुफस्सरीन के यहाँ इख्तलाफ हुआ है कि इसका क्या मतलब है। महिल असल में उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई चीज़ होती है या जहाँ कोई चीज़ उतरती है। तो अब कुर्बानी जो होती है वो तो कुर्बान का जो मक्का के पास है वहाँ होती है, और जो दिन है इसका वो यौमुन नहर है जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं, उस दिन की कुर्बानी होती है। तो अब मसला यह है कि आदमी फंस गया है रास्ते में, तो कुर्बानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कर दो जो मैसर हो, लेकिन सर उस वक्त तक नहीं मूंढोगे जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना चली जाए। तो इसका मतलब क्या ये है कि कुर्बानी करके उसका गोश्त संभाल कर लपेट कर खाना काबा की तरफ भेज दिया जाए, या क्या मतलब है इसका? तो फिर अक्सर मुफस्सरीन की राय यह है कि इसका मतलब है कि बस वहीं ज़िबा कर दी जाए। तो ठिकाने पहुंचने का मतलब है कि जो उसके साथ होता है वो कर दिया जाए, यानी कुर्बान करना है तो कुर्बान कर दिया जाए, तो वो हो जाए। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की राय भी यही है कि महिला का मतलब है कि वो ज़िबा कर दी जाए, अपने मनहर पहुँच जाए, अपने जहाँ उसको ज़िबा किया गया वहाँ वो पहुँच जाए और उसको ज़िबा कर दिया जाए। तो अब ये हज को आदमी जा रहा है और रास्ते में दुश्मनों में घिर गया है या किसी ऐसी बीमारी की वजह से घिर गया है या कोई भी, ये क्यास की बात है। यहाँ चूँकि आगे चलकर अमन का जिक्र है तो इसका मतलब यही है कि दुश्मन कुरान की आयत में, लेकिन फिर उसको क्यास करके दूसरी चीज़ों पर भी हम बीमारियों पर भी और इस तरह की चीज़ों पर भी जोड़ सकते हैं। तो आगे फरमाया फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ बही अज़न मिन रअसिही फ़फ़िदयतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्ता बिलुमरा तिलल हज। जो तुम में से कोई मरीज़ हो, सर मुंडाने की बात हो रही थी, तो जो तुम में से कोई मरीज़ हो या उसके कोई सर में तकलीफ़ हो तो वो बाल नहीं मुंडवा सकता, तो फिर वो फ़दिया देगा अल्लाह की राह में, यानी किसी मर्ज़ की वजह से या सर में कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से सर मुंडवाना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में फिर फ़दिया देना पड़ेगा। फ़दिया रोज़े की शक्ल में होगा, सदक़े की शक्ल में होगा और कुर्बानी की शक्ल में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई है, उसमें तीन रोज़े हैं, छः मस्कीनों का खाना है और एक बकरी को ज़िबा करना है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी पर छोड़ा था तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमा दी, आदमी कोई भी फ़ैसला करता तो ठीक था, अब हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है तो उसी को सर आँखों पर रखना चाहिए। तो जो तुम में से मरीज़ हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो और वो सर के बाल ना मुंडवा सकता हो तो फिर उसको फ़दिया देना है, तीन चीज़ों में से कोई एक। रोज़े रखेगा वो, सदका देगा या कुर्बानी करेगा। अब ये जो सूरत है इसमें ज़ाहिर है कि जो नरमी है अल्लाह ताला ने कर दी है कि भाई बीमारी की शक्ल में या मर्ज़ की सूरत में आदमी बाज़ात ऐसा काम नहीं कर सकता, तो दूसरा रास्ता भी है ताकि उसको ये मुश्किल ना हो कि मेरा हज हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने बाल नहीं मंडवाए। ख़वातीन के लिए जैसे हम जानते हैं कि थोड़े से बाल कटवा देना काफ़ी है, उनको हल्क के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तो उनके थोड़े से बाल भी हल्क के मर्दों के मुकाबले में बराबर हो जाएंगे। फमन तमत्ता बिलुमरत इलल हज, तो जिसने हज को जिसने जम फ़ायदा उठाया उमरे का हज के साथ मिलाकर, फमस्तैसर मिनल हदी, तो उसको भी जो हदी मुयस्सर हो करनी पड़ेगी। अब ये दूसरा मसला अल्लाह ताला ने बता दिया, पहला ये बताया कि हज पूरा करना चाहिए आम हालात में, इसमें गालबन मौका महल के अतबार से भी है, और ये पहलू भी है कि जो कुरैश थे वो बाज़ चीज़ें पूरी नहीं करते थे हज की, यानी वो अरफात तक नहीं जाते थे, मुज़दलिफ़ा से ही वापस आ जाते थे, इस तरह की जो चीज़ें करते थे वो उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है, और आगे जो है कि गिर जाने के बाद वो पहलू भी हो सकता है। और दूसरा ये फरमाया कि सर के बाल कब काटने हैं, कुर्बानी से पहले नहीं काटे जा सकते, कुर्बानी के बाद काटेंगे, जो नहीं कटवा सकता किसी वजह से उसको फिर ये फ़िदिया देना होगा। ये दो तीन अहकाम देने के बाद आगे फरमाया कि जो हज को उम्रे के साथ इकट्ठा कर दें, यानी हाजी अगर सफ़र एक ही सफ़र में दोनों चीज़ें इकट्ठी कर देता है कि वो यहाँ से गया, जाने के बाद उसने अभी 4-5 दिन रहते थे उसने एक उम्रा कर लिया, और उम्रा करने के बाद फिर अहराम खोल दिया, या उम्रे वाले अहराम ही में हज कर लिया, दोनों सूरतों में उसको एक कुर्बानी फ़िदिये के तौर पर देनी पड़ेगी। मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से कोई आदमी हज करने जाता है, तो वो पहुंच गया 5 तारीख को, हज 8 तारीख को शुरू होना है, 2-3 दिन पड़े हुए हैं, उससे सोचा कि मैं एक उम्रा कर लूँ, और उसने उम्रा किया, अहराम बांधा, और उम्रा करने के बाद अहराम खोल दिया, और उसके बाद 2 दिन के बाद हज कर लिया उसने। दूसरा ये है कि उसने अहराम बांधा, वो पहुँच गया था 1 दिन पहले, उसने अहराम बांध दिया और उम्रा किया और अहराम नहीं खोला, और हज का उसी तरह से इंतज़ार करने लग गया। इन दोनों सूरतों में उसने एक सफ़र में हज और उम्रा इकट्ठा किया। अब उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने इसका भी एक कुर्बानी करनी है, और जो कुर्बानी नहीं कर सकता उसको 3 दिन के रोज़े रखने हैं हज के दौरान में, और 7 रोज़े रखने हैं घर वापस आकर, अगर कुर्बानी नहीं कर सकता तो। ये वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ये कफ़ारे की नौइयत की चीज़ है। अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती जैसा बाज़ लोगों ने लिया है कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, इनाम नहीं है, कफ़ारा ही है, अलबत्त इसकी इजाज़त के एक सफ़र में हम दोनों काम कर सकते हैं, ये बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से रुख्सत है। तो 3 रोज़े रखने होंगे वहाँ पर अगर कुर्बानी नहीं कर सकता, और 7 रोज़े रखने होंगे वापस आकर। तिलका अशरतुन कामिला, तो फरमाया कि ये पूरे 10 दिन होंगे, यानी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो जुमला दोहराया है ये कोई हिसाब करके नहीं बताया अल्लाह ताला ने, जैसे बाज़ लोगों ने ख्याल किया कि अल्लाह ताला ने हिसाब करना सिखाया है इन आयतों में कि 7 और 3 10 होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे 10 हैं, जो पूरे 10 करने हैं आपने, ये मतलब इस जुमले का। अब जो ज़ाहिर है कि हज ही गया, उसने उमरे के साथ हज के साथ उमरा भी कर लिया, तो उसको 3 रोज़े अगर कुर्बानी नहीं दे सकता तो 3 रोज़े हज के दिनों में, और 7 रोज़े जो हैं वो बाद में आके पूरे करने हैं, गिनती पूरी करनी है 10 की, इसके बगैर उसकी कफ़ारा अदा नहीं होगा, वो फिर खुदा का देनदार होगा। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उनके लिए है कि जो उन लोगों में से ना हो जो मस्जिद हराम के पास रहने वाले लोगों में से ना हो, यानी दूर से आने वाले लोगों के लिए ये हुक्म दिया गया है। जो मस्जिद हराम के पास रहता है उसको इसकी इजाज़त नहीं है कि वो एक हज के साथ इस तरह से उम्रे को इकट्ठा करे, उसको हर दफ़ा अलग से आना चाहिए और उसको सच्ची बातें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहीं रहता है, आज हज करके चला गया, कल उमरा करके चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों ने इसके मानी ये लिए हैं कि अगर वो इकट्ठा करे तो उसको कफ़ारा नहीं देना। यानी जब ये कहा कि दूर से आया है तो वो एक सफ़र में हज और उमरा इकट्ठा करेगा तो वो कफ़ारा देगा, और जो करीब से आया है अगर वो हज और उमरा इकट्ठा करे तो उसको कफ़ारा नहीं देना, ये मतलब नहीं है, उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बकरना तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है कि करीब से आने वाला दो दो फ़ायदे उठाए और उसको कफ़ारा भी ना देना पड़े और वो हज भी कर ले और उमरा भी कर ले। असल में जो मस्जिद हराम के पास रहते हैं उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफ़र कर ही नहीं रहे, वो वहीं रह रहे हैं तो हज के दिनों में हज करेंगे, उमरे के दिनों में उमरा कर लेंगे, उनके लिए कोई इस तरह का मसला नहीं है। तो ये मतलब नहीं है हरगिज़ जैसा बाज़ लोगों ने लिया कि ये उनके लिए रुख्सत है जो वहाँ पर रह रहे हैं और दूसरों के ऊपर कफ़ारा है। तो जो मस्जिद हराम के पास नहीं रहते, मस्जिद हराम के हदूद का मतलब यह है कि वो उसी इलाके में रहते हैं, कम अज़ कम मीकात के दायरे के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए ये इसमें रुख्सत हो जाएगी। बहरहाल लोगों ने किलोमीटर्स में ही मुतय्यन किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है जो हाज़िरुल मस्जिद हराम है वो कौन है और जो हाज़िरुल मस्जिद हराम नहीं है वो कौन नहीं है, सबको पता है। जो वहाँ रहने वाले हैं उनको इस जुमले के मानी मालूम है। तो ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िर, तो उन लोगों के लिए ये फ़िदिये का जानवर ज़िबा करने का कहा गया है जो दूर से सफ़र करके आएँ और सफ़र करके दोनों चीज़ें इकट्ठी कर लें। वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अगर इस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हुई तो अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अब जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीयत की अहमियत किस तरह की होती है। शरीयत इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको जैसा चाहें मोड़ लें, जैसा चाहें उसके अंदर चेंजेस कर लें। जैसी मुकर्रर कर दी जाती है उसको वैसा ही रहना चाहिए। अगर वैसा ना रहे तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तिल का अशरत उन कामला, पूरे 10 दिन है, इसमें इतनी ही सख्ती है कि जो शरीयत में जो चीज़ मुकर्रर कर दी गई है उसमें हमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, उसको वैसे का वैसा ही अपनाना होगा जैसे अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। इसी रोशनी में अब आप समझ सकते हैं कि अतिमुल हज वल उमरा तलिल्लाह के अंदर जो मैंने ये पहलू बयान किया है कि अल्लाह की खातिर इसको पूरा करना है, तो मतलब ये कि जो शराए बताए गए हैं उस तरीके पर तुम लोगों ने पूरा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से, जैसे कुरैश मक्का जो है वो अरफात में नहीं जाते थे, अरफात से पहले ही पलट आते थे, या अपने शौक़ के मेले कर रहे हैं, तजारतें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अल्लाह की खातिर उसको पूरा नहीं कर रहे थे। तो ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरुल मस्जिद हराम से ये वाज़े कर दिया कि कुरैश मक्का के लिए ये रुख्सत, ये कायदा नहीं है, वो हज और उमरा इकट्ठा करने का मामला उनके लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला रुख्सत दे रहे हैं उनको जो दूर से आए हैं वो हज और उमरा इकट्ठा कर सकते हैं, जो वहाँ ही रह रहे हैं उनको हज और उमरा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है, ये उसका मतलब निकलेगा। शदीदुल इक़ाब के बारे में पहले भी वाज़े कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले का मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी सज़ा देते हैं, उसका मतलब है कि जो सज़ा देनी है वो देनी है, उसमें नरमी कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ख्याल कर लो कि अल्लाह ताला मान जाएंगे, लाड प्यार से कोई मिन्नतें कर लेंगे, कोई ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बस जो उसने सज़ा मुकर्रर कर दी है वो मिल कर रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये समझ लेना चाहिए। और शरीयत के अंदर ख़राबी करना ये अल्लाह ताला की मीज़ान में कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह ताला इफ्तरा अल्लाह कहते हैं, नबी करीम सल्लम इसको बिदात कहते हैं। तो जो आदमी बिदात करता है या इफ्तरा अल्लाह करता है वो दरअसल अल्लाह की पोजीशन संभालने की कोशिश करता है, वो अल्लाह की जगह लेता है, क्योंकि शरीयत देना अल्लाह का काम है, किसी आदमी का काम नहीं है। हद यह है कि रसूलों को भी इसकी इजाज़त नहीं होती कि वह अपनी तरफ से कोई शरीयत दें। तो जब कोई आदमी अल्लाह की जगह पर बैठ जाता है तो फिर उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये खुदा के ख़िलाफ़ बगावत है कि कोई अल्लाह की शरीयत को ख़ुद से तब्दील कर दे। इस पर अल्लाह ताला ने कहा है कि वो शदीदुल इक़ाब है, जो शरीयत बना दी गई, जो काम करना है कुर्बानी देनी है तो कुर्बानी देनी है, अल्लाह ने अगर इजाज़त दे दी है रोज़ा रखने की, सदका देने की, तो बस वही कर सकते हैं। और अगर 10 दिन मुकर्रर कर दिए हैं तो वो पूरे करने पड़ेंगे, वरना सज़ा मिलेगी। ये दायरे के शरीयत के अंदर तमाम शरीयतें जितनी भी हैं उसके अंदर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, रखना चाहिए। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो खुदा के यहाँ गुनाहगार होंगे। हज बड़ी इबादत में से है, और चूँकि आदमी ने कभी कभी करना होता है, और जो मुंतजमीन होते हैं हज के वो भी साल में एक दफ़ा करते हैं, तो जैसे हम भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो हर नमाज में ईद की नमाज़ का तरीका बताया जाता है कि इस तरह से पढ़ी जाएगी, क्योंकि रूटीन की चीज़ नहीं है, तो इसलिए फिर इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि अब कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हज की बात चल रही थी अशर हराम के पहलू से, उसमें फिर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हज के पहलू से वाज़े करनी थी वो भी कर दी। आगे मज़मून यही चल रहा है, फरमाया कि अल हज अशरुन मालूमात, हज के जो महीने हैं वो मालूम हैं। फमन फ़रदा फ़ीहिन अल हज फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, हज के मुतय्यन महीने हैं। मालूमात का मतलब होता है मालूम मारूफ हैं, सारे जानते हैं। तो जिसने इन दिनों में हज का प्रोग्राम बना लिया कि वो हज करेगा, तो उसके लिए फिर कुछ शर्तें हैं। अब अल हज अशरुन मालूमात के दो पहलू हो सकते हैं समझने के लिए, गौर करने के लिए। एक ये कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है, उन्हीं महीनों में हज किया जाएगा जिन महीनों में हज मुकर्रर चला रहा है शुरू से, सब लोग जानते हैं। दूसरा मालूमात का मतलब ये हो सकता है कि ये मादूदात के माने में लिया जाए कि चंद दिन है, मालूम है, ज़्यादा नहीं है, तो उसमें जो पाबंदियाँ लग रही हैं वो बर्दाश्त कर सकोगे तुम, कोई मसला नहीं है। तो अब ये बात के किस मानी में तरजीह दी जाए, मालूमात का लफ्ज़ जो है ये मादूदात के मानी नहीं देता, और जो मादूदात है उसके अंदर भी दो मानी होते हैं। एक ये कि गिन कर फ़र्ज़ किए जा रहे हैं कुछ चीज़, और उसमें चंद का मफहूम भी होता है। जब जो चीज़ गिन कर दी जाए, जब हम कहते हैं फिंगर ट्रिप्स पे मेरी बात, तो इसका मतलब थोड़ी सी चीज़ें हैं और मुझे अच्छी तरह याद हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें गिन कर दी जाती हैं उनके अंदर थोड़ा होने का, कि वो काउंटेबल हैं, ये मफहूम आ जाता है, जिससे थोड़े होने का मफहूम आता है। लेकिन मालूमात में थोड़े होने का मफहूम नहीं है। तो पहला जुमला ये मुकम्मल समझिए कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिन महीनों में हज तुम्हें मालूम है उन्हीं में करना है, मैं कोई टाइम तब्दील नहीं कर रहा, वो हज के महीने में रहेगा, उन्हीं दिनों में रहेगा जिनमें हज किया जाता है। अब आगे फरमाया कि फ़मन फ़रज़ा फ़ीहिन्नल हज, कि जिसने हज को इन महीनों के अंदर फ़र्ज़ कर लिया अपने ऊपर, तो वो क्या करेगा। पीछे एक सवाल छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि उसका कि हज के 7 दिनों का जिक्र होना चाहिए, महीनों का नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये हमने कहना है कि महीने मालूम है, तो तमाम 3 महीनों में पाबंदियाँ थोड़ी हैं, पाबंदियाँ तो सिर्फ अहराम बांधने के बाद शुरू होती हैं। तो इसलिए अशरुन मालूमात का ये मफहूम लेना कि हज के महीने मुतय्यन हैं, मालूम है, इसलिए जो तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं वो ज़्यादा भारी नहीं है तुम्हारे ऊपर, चंद ही दिन निकल जाएगी, उसके लिए दिन का लफ्ज़ आना चाहिए, अशुर का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। अशुर का मतलब तो है कि पूरे 2.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितने भी हैं उनमें तुम्हारे ऊपर पाबंदी रहेगी, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इसलिए इस जुमले को अलग से लेना चाहिए और अगली जो पाबंदी हैं उनको अलग से लेना चाहिए। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्न अलहज फ़ला रफ़स वला फ़सूका वला जिदाल फ़िल हज, तो जिसने फ़र्ज़ कर लिया अपने ऊपर इन महीनों के अंदर हज करने को, तो उसके ऊपर कोई रफस, उसको रफस नहीं करना चाहिए, फसूक नहीं करना चाहिए और जिदाल नहीं करना चाहिए। तीनों की मैं वजाहत करता हूँ। फमन फ़रद अफ़ीन, जिसने इन्हीं महीनों में हज करने का प्रोग्राम बना लिया, तो अब वो अहराम बांधेगा, अहराम बांधेगा तो फिर वो रफस नहीं कर सकेगा, फसूक भी नहीं कर सकेगा और जिदाल भी नहीं कर सकेगा। रफस के मानी होते हैं जिनसी मामलात की बातें करना या उसको अमली तौर पर करना, दोनों रफस के अंदर आती हैं। बातचीत, इस तरह की चीज़ें, اس طرح کے خیالات, وہ ساری چیزیں رفس کے اندر آ جاتی ہیں. حد یہ کہ پاکیزہ ماحول میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا بھی رفس میں آ جاتا. تو یعنی فوش گوئی سے لے کر فوش حرکات تک منع ہو جائے گا. ولا فسوق, کوئی نافرمانی نہیں ہے. فسوق جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے عربی زبان میں, صرف نافرمانی کے معنی نہیں رکھتا, بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہیں کہ نقصان پہنچانے کا عمل, یعنی جب کوئی جانور آپ کو حملہ کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ فاسق ہو گیا ہے, یعنی اس نے آپ کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا یا کچھ کر لیا. تو فسوق کے اندر دونوں معنی ہیں کہ نہ خدا کی کوئی نافرمانی ہو, نہ تم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنو, ان کے لیے کوئی ضرر کا, نقصان کا, چوٹ لگنے کا, مکہ مار دیا, کچھ کر دیا, اس طرح کی چیزیں, یا ان کا پیسہ بٹور لیا, یا ان کو بستر اٹھا کر لے گئے, اپنے چوری نہیں کیا لیکن اپنے آرام ہی کے لیے ان کا پانی پی لیا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ فسوق کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہیں, نافرمانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانا. بلا جدال فی الحج, اور حج کے دنوں میں جدال بھی نہیں ہوگا, جھگڑا بھی نہیں ہوگا. جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے میں نے یہاں بیٹھنا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, میں نے یہاں خیمہ لگانا ہے, آپ وہاں لگا لیں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو انسانوں کے بیچ میں ہو جاتے ہیں. یا جیسے ہمارے پاکستانی کرتے ہیں حضرت اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے یا مقام ابراہیم کے قریب جانے کے لیے, وہ جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں, وہ جھگڑے منع ہیں. بالکل ڈسپلن کے ساتھ, آرام کے ساتھ حج کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی جھگڑے ہوں, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اکٹھے گئے ہوئے ہیں, دوست اکٹھے گئے ہوئے ہیں, جھگڑا ہو گیا, ہر طرح کا جھگڑا منع ہو جائے گا, حج کے حوالے سے بھی اور حج کے علاوہ بھی جو جھگڑے ہیں وہ سارے منع ہو جائیں گے. تو رفس نہیں ہوگا, یعنی جنسی پہلو سے کوئی بات, کوئی معاملہ, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ولا فسوق, کوئی نافرمانی نہیں ہوگی, اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی عمل کیا جائے گا. ولا جدال, اور نہ جھگڑا ہوگا حج کے موقع پر. اب یہ جو حج کے موقع پر جھگڑا ہے, رفس ہے, فسوق ہے, یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سے دو چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, ہمیشہ ہی حرام ہیں, فسوق بھی حرام ہے اور جدال بھی حرام ہے. لیکن بہرحال کچھ جائز جھگڑے ہوتے ہیں اور کچھ جائز رفس ہوتے ہیں, وہ عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو مثلا گھر بنانے میں جھگڑا ہو سکتا ہے, کسی کا حق ہے, کسی نے مار لیا ہوگا تو جھگڑا ہو جائے گا, یہ جائز جھگڑا ہے کہ آپ اپنا حق واپس لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. لیکن حج میں بالکل ہی اس کی نفی کر دی گئی, کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا, اور فسوق بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی. فسوق کبھی بھی جائز نہیں ہوتا, رفس جائز ہو سکتا ہے, جدال جائز ہو سکتا ہے عام دنوں میں. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں جائز ہو سکتی ہیں, اور ایک چیز ایسی ہے جو کبھی بھی جائز نہیں ہوتی. تینوں کو اکٹھا کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں خصوصی اہتمام کے ساتھ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اب یہ جو حاجی کے اوپر جو چیزیں, یہاں تین چیزیں منع کی گئی ہیں, یہ حاجی کو حج کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے, لڑنے جھگڑنے کے لیے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے نہیں جا رہا, تو یہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ یہ حج کے مراسم میں سے ہے. حج جیسے ہم کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا, تو یہ جو حرکتیں کرے گا اس کا روزہ, اس کا حج ٹوٹ جائے گا. یہ مطلب ہے کہ اس کے حج میں نقص آ جائے گا, اتنا ہی خراب حج ہوگا جتنے وہ جھگڑے کرے گا. اگر رفس کرے گا تب اس کا حج خراب ہو جائے گا, پورا ثواب نہیں ملے گا. انہی تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے کہا ہے کہ جو ان تینوں سے بچ جائے گا وہ حج مبرور کر کے آیا ہے. اور یہ حج مبرور جو ہے اس میں ایسا ہوگا کہ جیسے آدمی آج ہی پیدا ہوا ہے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ حج مبرور کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ رفس نہ کریں, فسوق نہ کریں, اور جدال نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حج کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں, حج کا ثواب کم ہو جائے گا, یا حج ہوگا ہی نہیں, جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, تو اس کا حج نہیں ہوگا جو یہ تین حرکتیں کرے گا. وما تفلو من خیر یعلمہ اللہ, البتہ جو نیکی کا کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اب یہ بہت اہم جملہ ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے برائی کر جاتے ہیں کہ اس آدمی کو پتہ چلے کہ اس نے غلط حرکت کی ہے, झगड़ा इसलिए कर जाते हैं कि इसको पता चलना चाहिए कि उसने गलत काम किया है। ये जो जज्बा है अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम अगर उसको नहीं भी बताओगे कि तुमने गलती की है तो मैं जानता हूँ, तुम अगर रुक जाओगे झगड़ा करने से, इस जज्बे से निकल आओगे कि उसको बता दूँ कि तुमने गलत किया है, तो बस मैं तो जानता हूँ ना, तुम्हें अजर मिल जाएगा। तो हर चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं होता, अल्लाह ताला जानते हैं। बहुत तसल्ली का जुमला है, बहुत कबूलियत का जुमला है कि बाज़ मौके पर झगड़ा किसी आदमी ने आपके पाँव पे मार मार दिया तो आपको गुस्सा आ गया, आपने धक्का दिया कि तुम क्या कर रहे हो, झगड़ा कर दिया आपने, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर बर्दाश्त कर दोगे उसके पाँव के, तुम्हारा पाँव जो आ गया है, वो जो तकलीफ़ हुई है, तो अल्लाह तो जानता है, तुम्हें उसका अजर मिल जाएगा। इस तरह दो मेरा पढ़ो कि मैं उसको बता कर रहा हूँ। इसी तरह किसी ने कोई नुकसान पहुँचा दिया है तो आपके जज्बा पैदा हो सकता है कि उसको बताऊँ कि तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया है। तो लेकिन फसूक में ये बताया गया कि आप जानबूझ के किसी के ऊपर पाँव नहीं मारेंगे, किसी का चीज़ ख़राब नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने रखा जाए तो उसमें ये हम जब कोई ईदी वगैरह भी देते हैं पाकिस्तान में तो वालदैन के सामने देते हैं बच्चों को, ताकि कबूलियत हो जाए अल्लाह के हाँ। तो वो नेकी जब करनी है आपने तो बस अल्लाह के लिए करें। खैर तोहफे तारीफ तो होते इसलिए ताकि वालदैन खुश हों, बहन भाई खुश हों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन जगहों पर जब झगड़ा हो रहा होता है तो कई लोगों का जज्बा मैंने यही देखा है कि वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि वो गलती कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ख़ास तौर से हज के दिनों में। तो फरमाया कि जो भी तुम नेकी करोगे, यानी रफस से बचोगे, फसूक से बचोगे, झगड़े से बचोगे हज के दिनों में, तो जान रखो कि जो भी तुम करोगे अल्लाह उसको अच्छी तरह जानता है। तो अल्लाह अच्छी तरह जानता है तो तुम्हारे लिए तसल्ली होगी कि मुझे अल्लाह के यहाँ अजर मिल जाएगा, मेरा हज कबूल हो जाएगा, तो बस ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। व तज़व्वदू, और ज़्यादे राह लो। ये बहुत मुश्किल है अरबी ज़ुबान के अंदर, बाज़ असालीब होते हैं कि बस बात नामुकम्मल करके छोड़ देते हैं। यहाँ ये बताया नहीं कौन सा ज़्यादा सफ़र लेना है। ज़्यादा सफ़र होता है जो साथ ले जाने का सामान होता है, कोई कपड़े हैं, कोई खाना है, कोई पीना है। पुराने ज़माने में तो और तरह की चीज़ें भी रखनी पड़ती थी इतने। तो वो तज़व्वुद में लोगों ने ये पहले मतलब यही लिया है कि जो सफ़र का सामान है वो अपने साथ रखो, जो कपड़े लता लेना है, कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी है, कोई पैसे पुसे रखने हैं वो रख लो। अब सवाल ये है कि आगे जो जुमला बोला है फ़ैन्ना खैर ज़्यादे तकवा, क्योंकि बेहतरीन ज़्यादे सफ़र तकवा है, दोनों के बीच में रबता ही कोई नहीं। यानी मैं आपसे कहूं कि भाई जाते हुए ना पानी लेते जाइए, क्योंकि पानी रखना जो बड़ा सवाब का काम है, तो ताल्लुक तो समझ में आ गया। लेकिन मैंने कहा जी ज़्यादा सफ़र रखिए, क्योंकि ज़्यादा सफ़र, क्योंकि तकवा बेहतरीन ज़्यादा सफ़र है, तो ये तो नहीं जुमला जुड़ता आपस में। तो क्योंकि के साथ पीछे फिर इसका क्योंकि का मुतल्लिक हिस्सा मौजूद है कलाम में लेकिन बोला नहीं गया, तो जुमला यूँ होगा कि ज़्यादा सफ़र लो तकवे का, यानी ऊपर जो बयान की हुई तीनों चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सफ़र बना लो, क्योंकि ये तकवे की चीज़ें हैं, तो तकवा ही बेहतरीन ज़्यादा सफ़र है। तो पिछली जो बात है कि तुमने रफस नहीं करना, फसूक नहीं करना, जिदाल नहीं करना, वही ज़्यादा सफ़र है। तो तज़व्वदू बिहा, यानी बिहा एक हज़फ़ है, इन चीज़ों को ज़्यादा सफ़र के तौर पर लेकर चलो कि तुमने रफस नहीं करना, फसूक नहीं करना, जिदाल नहीं करना। तो ये तकवे की चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अपना ज़्यादा सफ़र बनाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़्यादा सफ़र तकवा है, खुदा खौफी। तो हाजी को खुदा इन तीनों बातों से बचाने के लिए कौन सी चीज़ काम आएगी? यानी अगर आप वमा तफ़लू मिन खैरिन यालमुल्ला को नहीं जानते कि मेरी नेकियां जो मैं सब्र कर रहा हूं हज के दौरान में, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, अल्लाह ताला नहीं जानता, तो आप सब्र नहीं कर सकेंगे। सब्र नहीं कर सकेंगे तो तकवे से हाथ धो बैठेंगे, तकवे से हाथ धो बैठेंगे तो झगड़ा भी करेंगे, रफ़स भी करेंगे, फसूक भी करेंगे। उसने एक मुक्का मारा है आपको या उसका बाजू लग गया चलते हुए, आप उसको धक्का दे कर दो चार मुक्के लगा सकते हैं। तो ये इसके इससे बाज रहने की चीज़ क्या है जो काम आएगी? वो तकवा। तो इसलिए फरमाया व तज़व्वदू का मतलब है کہ تقوی کو ساتھ زیادہ سفر بناؤ، کیونکہ بہترین زیادہ سفر تقوی ہے. تو یہاں اس سامان کی تیاری کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ سفر کرتے ہوئے اچھا زیادہ سفر لو، کپڑے بھی اچھے لے کر جاؤ، کھانے کی چیزیں بھی صحیح لے کر جاؤ، پیسہ بھی اپنی جیب میں رکھو، یہ مراد ہی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے تمہارے تقوی کام آنا ہے، تو تقوی کو زیادہ سفر بناؤ، کیونکہ تقوی ہی بہترین زیادہ سفر ہے. بلکہ ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ بہترین زیادہ سفر تقوی ہے، بہترین زیادہ سفر تقوی ہے. دونوں سے مفہوم فرق پڑ جائے گا. تقوی بہترین زیادہ سفر ہے، اس کا مفہوم اور ہے، اور بہترین زیادہ سفر تقوی ہے، اس کا مفہوم اور ہے. تو پوری بات یہ ہو گئی کہ حج کے متعین مہینے ہیں، معلوم ہے سب کو، میں کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر رہا ہوں، سب انہی دنوں میں حج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور چلتا رہے گا حج کا سلسلہ. البتہ حاجیوں جو حاجی کرنے کا حج کرنے کا فیصلہ کر لے، اس میں عمرہ بھی شامل کر لیجئے، جو حج کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو نہ رفث کرنا ہے، نہ فسوق کرنا ہے، نہ جدال کرنا ہے حج کے دنوں میں. ظاہر ہے کہ یہ احرام باندھ دینے کے بعد کی شرائط ہیں. جس نے فیصلہ کر لیا اور ابھی ہر احرام نہیں باندھا، اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں. اب فسوق اور جدال تو خیر ہمیشہ ہی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اس کے بعد یہ اس سے باز کیسے آئیں گے، اس سے بچیں گے کیسے ان تینوں چیزوں سے؟ صرف تقوی کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ بہترین جو زیادہ سفر ہے وہ تقوی ہے. تو تقوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، خواہ پیسے ہونا ہو، خواہ کپڑے ہونا ہو، لیکن تقوی ساتھ ہونا چاہیے. تو حاجی کو جو چیز ساتھ لے کر جانی ہے اصل میں وہ تقوی ہے. تقوی کے بارے میں شروع سے بات کرتا چلا رہا ہوں. سورہ البقرہ کا آغاز ہی تقوی سے ہوا تھا. تقوی خدا خوفی ہے، غلطی کو مان لینا ہے، اصلاح کا جذبہ ہونا ہے، دوسرے کو موقع دینا ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے، اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، حقیقت پسندی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم خدا خوفی یا خدا کے لحاظ سے دنیا کو دیکھنا کہ آخرت میں میں نے کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں وہ کام کروں جو مجھے آخرت میں کامیاب کر دیں. اور حاجی کے لیے مزید اضافہ ہوتا ہے کہ میرا حج نہ خراب ہو جائے کہیں، اگر میں کوئی جھگڑا کروں تو میرا حج برباد نہ ہو جائے. تو یہ تقوی یہ بھی ہوگا کہ میرا حج خراب نہ ہو جائے. وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو اے عقل والو. وَتَّقُونِ میں نون پہ جو زیر ہے وہ یا کی قائم مقام ہے. مجھ سے ڈرو اے أُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہ بتا دیا کہ تقوی کیا کون سا ہے. عربی زبان میں تقوی کا مطلب بچنے کے طریقے، بچنے کا، یعنی صحیح معنی اس کے بچنے کے. تو بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی چیز اپنائیں گے وہ تقوی ہوگا. مثلاً آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رومال رکھا، تو آپ نے کیا کیا، تقوی اختیار کیا کہ دھوپ آپ کو بیمار نہ کر دے. ٹھیک ہے، آپ نے جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ نے وہ آرمر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کس لیے، بچنے کے لیے. تو یہ بھی تقوی ہے. تو تقوی کا مطلب اصل میں وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی چاہیے کسی کام کے خراب ہونے سے بچنے کے لیے. تو حج سے، حج کے خراب ہونے سے بچنے کے لیے جو چیزیں بچنی چاہیے وہ بچیں گی. لیکن اس میں تقوی کون سا کہ مجھے دھوپ لگ کے میں بیمار نہ ہو جاؤں، یہ بھی تقوی ہے اپنے لغوی معنی میں، اپنے لٹل سینس میں یہ بھی تقوی، یہ بھی تقوی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس تقوی کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والا تقوی، میری خاطر جو تم چیزیں اختیار کرو گے وہ تقوی اے عقل والو تم اختیار کرو. اولی الالباب جو ہے یہ لب سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو باتوں کی کنہا کو سمجھنے والے ہوں، جو باریکیوں کو سمجھنے والے ہوں، جو حکمتوں کو سمجھنے والے ہوں، ان کو اولی الالباب کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذہانت اور عقل میں فرق ہے. ہر ذہین آدمی عقل مند نہیں ہوتا اور ہر عقل مند آدمی ذہین نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے. کتنے ہی ذہین میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ بالکل عقل سے پیدل، وہ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں کہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں. اور کتنے میں نے عقل مند لوگ دیکھے ہیں کہ ریاضی نہیں جانتے، بات سمجھانا چاہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن معاملہ فہم، انجام کے اعتبار سے چیزوں کو کرنے والے، بڑی گہری باتیں کرنے والے، وہ عقل مند ہوتے ہیں. تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو دراصل उस रास्ते को अपनाए जो गलत ना हो, नुकसान से बचाने वाला हो, समझदार वाला। हम भी कहते हैं ना बड़ा समझदार आदमी है, बल्कि एक जुमला और बोलते हैं बड़ा दुनियादार आदमी है, उसको पता है कि दुनिया के साथ कैसे मामला किया जाता है, उसने उतार चढ़ाव देखा हुआ है। इस तरह के आदमी को उलूल अलबाब कहते हैं। इसमें ज़हीन होना ज़रूरी नहीं है, ये एक रेडी वाला जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी उलूल अलबाब है। और वो आदमी जो ऑक्सफोर्ड से PhD कराया है, वो हो सकता है उलूल अलबाब ना हो। तो कितने ही एथिस्ट हैं जो उलूल अलबाब नहीं है, और कितने ही जाहिल हैं इन उलूम के एतबार से जो जदीद चीज़ें नहीं पढ़े हुए लेकिन वो समझदार हैं, अक्लमंद हैं। वो उन चीज़ों को मान लेते हैं जो उनके अकल के, उनकी समझदारी के मुताबिक होती हैं। तो ये फ़र्क करके चलना चाहिए। अल्लाह ताला ज़हीन के मानी में नहीं बोल रहे हैं या उलूल अलबाब। इसे अल्लाह ताला ने एक मौके पर कहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। लोग समझ लेते हैं जो मदरसे से पढ़े हुए हैं, वो आदमी भी अल्लाह से, जो अल्लाह से डरने वाला है वो आलिम है, जिसको ये पता है कि मैंने कल क़यामत वाले दिन खुदा के पास जाना है, जवाबदेही होनी है, वो सही बात को जानने वाला। तो जो सही बात को जानने वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं। उसे मुराद मदरसे में पढ़े हुए नहीं हैं, उनमें से कितने ही लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते हैं। मैं ऐसे उलमा को भी जानता हूँ जो जुम्मा पढ़ाते हैं लेकिन अंदर से मुल्हिद हैं। जुम्मा इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका रोज़गार कोई नहीं। ये तो हर आलम दीन अल्लाह से डरने वाला नहीं होता। तो आलिम और अक्लमंद दोनों में फ़र्क है। हमारे यहाँ चूँकि फ़लसफे की वजह से अकल का मफहूम बड़ा चेंज हो गया। अक्लमंद का मतलब समझदार आदमी है, ना कि फ़लसफा पढ़ा हुआ, ना कि वो जो आर्गुमेंटेशन है उसको अच्छी तरह समझने वाला, इस्तदलाल करने वाला, नहीं, वो मतलब नहीं है। समझदार आदमी, स्याना आदमी, जो आकबत को सामने रखते हुए, जो अंजाम को सामने रखते हुए हकीकतों को तस्लीम कर लेता है, उसको उलूल अलबाब कहा जाता है। तो अब जो हज के अंदर जो चीज़ें मना थीं उनको बता दिया, हज के दिन बता दिए, जो उसमें मना करने की चीज़ें थी उनके बचने का तरीका बता दिया। दो तरीके बताए, एक ये कि जो कुछ तुम नेकी करोगे तो ये ख्याल ना करो कि जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है उसको लाजमन बता कर रहो कि तुमने तकलीफ़ पहुंचाई, नहीं, वो अल्लाह ताला जानता है तुम्हारी तकलीफ़ को। उस तकलीफ़ को सहते हुए जो तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानते हैं। और तकवे को फरमाया कि तकवे का ज़्यादा राह पकड़ो, क्योंकि तकवे के बग़ैर तुम इन चीज़ों से बच नहीं सकते हो। और बेहतरीन ज़्यादा सफ़र हाजी के लिए, उमरा करने वाले के लिए एक ही है, वो तकवा है। और तकवा कौन सा? धूप से बचने के लिए सर पर रुमाल रखने का वाला तकवा नहीं कह रहा मैं, तकवा वो जो मुझसे करना है, अल्लाह ताला से करना है। तो वत्तकूनी या उलिल अलबाब, तो ऐ समझदार लोगों, अल्लाह वाला तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के सामना करने से बचने के लिए कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दोज़ख में ना डाल दे, वो वाला तकवा इख्तियार करो। वा आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।